ओम शांति
एंड गुड मॉर्निंग.
आवाज नहीं आती है, गुड मॉर्निंग. अब मजा आया, ऐसा लगा कि हम लोग सब साथ में हैं. आप सबका अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है. कुछ बात मुझे ध्यान में आती है, किसी ने पूछा कि यहां आए क्यों हैं हम लोग. तो हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, सज धज कर जाते हैं, और कई बार ही हम लोग कुछ इत्र या परफ्यूम भी लगाते हैं. ऐसा होता है नहीं सभी के साथ? हाँ या नहीं बताइए, होता है ना? बिल्कुल करके जाते हैं. लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है. कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, मजा तब है जब आपकी शख्सियत आपके किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए. और ऐसी ही शख्सियत, ऐसा ही किरदार परमात्मा हमको देता है. अभी आपने देखा ना हमारे गिरीश भाई को, जिन्होंने हैप्पीट्यूड फिर एक बारी करके दिखाइए प्यार से. हाँ, स्माइल चेहरे पर होना चाहिए. मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं उन्हीं के लिए कि मैं क्यों खुश रहूं, कि हर जज्बात को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती. मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पना नहीं मिलती. तो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए. तो हम आज की कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर आते हैं. देखा जाए तो बिजनेस केवल वही नहीं जो कि कारोबारी हैं. बिजनेस हम सब लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं. कुछ लोग कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं. लेकिन एक नए प्रकार का बिजनेस भी होता है कि कम लोग भगवान के साथ भी आज लोग बिजनेस करते हैं कि मुझे ये करा देना तो मैं ऐसा चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मुझे ऐसा करा देना तो ऐसा कराऊंगी. तो आज की जो यात्रा है हम बड़ी अनोखी यात्रा पर चलेंगे. तैयार हैं सभी लोग? हाथ हिला के बताइए यस और नो. हाँ बिल्कुल, नींद तो पक्का नहीं आने दूंगा मैं आपको, उसमें कोई डर है नहीं. लेकिन ये पक्की बात है कि इस यात्रा में हम सब लोग साथ में चलेंगे isn't it? लेकिन इस यात्रा को मैं एक बहुत नए तरीके से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अभी कुछ इवेंट हुआ था डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, और मेरे को लगता है कि सारे वर्गों पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन मेजर इफेक्ट है वो बिजनेस विंग पर बहुत ज्यादा हुआ. काफी ज्यादा लोगों के बिजनेस डिस्ट्रॉय भी हुए. तो जब उसको हमने डिटेल में स्टडी किया तो हमें उसका बहुत आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव मिला, हमें उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर अंतर ध्यान करने का, उसको अध्ययन करने का मौका मिला. एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का था, वो यंग लड़का धनुष बाण की प्रतियोगिता बहुत अच्छी खेलता था, हर एक को हराता, और हराते हराते वो एक दिन बहुत आगे पहुंच गया. जैसे जैसे वो बड़ा बना तो उसको अपनी जिंदगी में अभिमान आने लगा. तो एक व्यक्ति ने उसको बोला कि तुम अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो, यू थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम इस गांव के कोने के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको जाकर हरा कर दिखाओ. अगर तुम उसको हराओगे तो मैं मानूंगा कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो. तो उसने कहा ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बड़े बड़ों को धूल चटा दी है. तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उससे जाकर बोला कि मैं आपको धनुष बाण की प्रतियोगिता के लिए चैलेंज करता हूं. तो उसने कहा बेटा मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मुझे हराकर तुम क्या करोगे, तुम किसी और यंग लड़के को पकड़ो जो इस दुनिया में बहुत आगे है. तो उसने कहा नहीं, लोग बोलते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनूंगा. तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं. तो वो लोग सामने बिल्कुल एक मैदान में आए, तो उस यंग लड़के ने अपना धनुष बाण में से तीर निकाला और बाण निकालकर एक्यूरेटली एक निशाने पर साधा. उसने एक और तीर निकाला और एक और तीर निकालकर पुराने निशाने को भेदता हुआ एक्यूरेट लगाया और उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं. तो उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों तीर निकाले और एक के बाद एक छोड़ते हुए उसको एक्यूरेटली कर दिखाया और उससे बोला कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, आओ मेरे पीछे. तो वो उसको उस गांव के कोने के अंदर दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत गहरी खाई थी, एक पतला सा रास्ता उसके ऊपर जा रहा था, वहां पर उन्हें ले गया और ले जाकर उसको बोला कि आओ मेरे पीछे, इन पहाड़ों के बीच में जाके हमको खड़ा होना है. तो जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे उस यंग लड़के के पांव बुरी तरह कांपने लगे. तो उसने कहा आप कहां ले जा रहे हो? उसने कहा आप चिंता नहीं करो, तुम मेरे पीछे आओ, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना है, क्योंकि जो तुमने कहा वो मैंने किया. तो बीच पहाड़ों में दोनों के बीच में जाके हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर वो लोग खड़े हो गए। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और दोनों पहाड़ों के बीच में एक जगह पर एक्यूरेट निशाना लगाया और उस लड़के से बोला कि बेटा क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तब मैं तुम्हें दूसरे तीर का यूज बताऊंगा। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। उसके पांव बुरी तरह कांप रहे थे, उसके माथे से पसीना छूट रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाला और जैसे ही निशाना साधा वो तीर गिरकर खाई में जाकर गिरा, वो निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उस बूढ़े व्यक्ति के चरणों में पड़कर बोला, और ध्यान से सुनिएगा क्या बात है, उससे बोला कि माफ करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, लेकिन देखूं तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ तो आप हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत नम्रता से उसे प्यार से अपने बाहों से उसे उठाया और उठाकर अपने गले लगाकर बोला कि बेटा तुमने धनुष और बाण पर तो पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो, लेकिन वो मन जो तुम्हें हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है, और क्योंकि तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो परिस्थिति जरा सी भी खराब हुई और तुम्हारा निशाना चूक जाता है। तो यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा बताइए, मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। खुश भी रहना है तो मन को कंट्रोल करके हमारे अंदर खुशी ऑटोमेटिकली आएगी। तो आज हम जब यहां पर आए हैं, तो किसको कॉन्कर करने आए हैं, किसको समझने आए हैं, अपने मन अपनी आत्मा को हम लोग समझने आए हैं, और यही हमारे जीवन का मूल सत्य है, क्योंकि जो हम इस मन के अंदर डालेंगे वही हमारी जिंदगी से बाहर निकलेगा। एक बड़ी मजे की बात आपको सुनाता हूं। एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था एक मिट्टी के बीच में और एक कुम्हार के बीच में। कुम्हार जो है बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बना रहा था और सुंदर बर्तन बनाते हुए उसने एक चिलम बनाई जिससे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया और डेकोरेट कर अपने पास रख दिया सजाकर। फिर थोड़ी देर बाद मिट्टी उसको देख रही थी, थोड़ी देर बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने उस चिलम को तोड़ दिया और तोड़कर बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। तो मिट्टी उससे बोली कि कुमार तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई पर तूने अब इसको तोड़ क्यों दिया। तो कुमार मुस्कुराते बोला उससे कि ये माटी मेरा मन बदल गया, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे बोली कि कुमार तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो उसने कहा तुम ऐसा क्यों कहती हो मिट्टी। तो उसने कहा कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। तो जो हम अपने इस मन के अंदर डालते हैं वही हमारे यहां से बाहर निकलता है। अभी आपको डॉक्टर आपको गिरीश भाई बता रहे थे ना कि अगर संतरे को निचोड़ेंगे तो संतरे का रस निकलेगा, इसी प्रकार अगर हमारे मन के अंदर खुशी है, अगर हमारे मन के अंदर पीस है, शांति है, तो हर परिस्थिति का सामना जो है हम खुशी और शांति से ही करेंगे। तो तैयार हैं आज की इस यात्रा के लिए बताइए, तैयार हैं सभी लोग। तो आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ेगा, आपको बीच बीच में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अपने मोबाइल फोन को और अपने इस फोन को भी ऑफ कर दीजिए, साइलेंस में बैठकर इस यात्रा में हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये जो यात्रा है ना ये यात्रा आपके बराबर वाले की नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, शाम को जब हम सुन के जाते हैं तो फोन लगाते हैं, आज बहुत बढ़िया बात सुनी, आज हमको डॉक्टर गिरीश ने बताया, हमको मोहित ने बताया कि ये बातें जो थी ना ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया थी, हाँ अगर तुम होते तो तुमको बहुत मजा आता, लेकिन आज जो भी हम सुन रहे हैं किसके लिए सुन रहे हैं, किसके लिए सुन रहे हैं बताइए, अपने लिए सुन रहे हैं। जो भी परिवर्तन करना है हमको अपने अंदर करना है, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, मेरे मनोविज्ञान मेरी विचारधारा परिवर्तित होगी तो मेरा जीवन ऑटोमेटिकली परिवर्तित होगा, और जब मेरा जीवन परिवर्तित होगा तो मेरा परिवार और मेरा समाज ऑटोमेटिकली ही परिवर्तित हो जाएगा। आज की इस जिंदगी का बड़ा अजीब सा एक माहौल बन गया है और जिसमें यही किसी ने कहा है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज ही निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज ही निराले हैं, दिलों में अंधेरे हैं और सड़कों पर उजाले हैं। तो आज हम सब लोग अपने जीवन के अंदर, अपने दिलों के अंदर कुछ दीपक जलाकर जाएंगे। उसमें से पहला दीपक जो आपको गिरीश भाई ने दिया, वो पहला दीपक क्या है कि मुझे सदा अपने जीवन के अंदर कैसा रहना है, खुश रहना है। कौन कौन ये एक्सरसाइज दो दिनों के लिए जब तक हम यहां पर हैं जरूर प्रैक्टिस करेगा 24/7? हाथ उठाकर बताइए, खुश रहेंगे सभी लोग, बोलिए आज के बाद हम लोग खुश रहेंगे, हरेक को खुशी देंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज, पहला दीपक हम अपने दिल के अंदर जला रहे हैं कि हम लोग सदा अपने जीवन के अंदर खुश रहेंगे। अभी हम सब लोगों ने 8 नवंबर को एक बहुत मेजर इवेंट विटनेस किया। उस 8 नवंबर की रात को 8 बजे जब वो प्रसारण चालू हुआ तो हमारे पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो चेंज हो गई। और इसको कहा गया, मैं अनुरोध करूंगा कि आप स्लाइड्स पे फोकस करें, तो वो पूरी इकोनॉमी हमारे देश की चेंज हो गई। और चेंज जैसे ही हुई उसने हमारे पूरे देश को प्रैक्टिकली आप देखेंगे लाइनों में लगा दिया। गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति भाग रहा था, किसी को कुछ बदलवाना था, किसी को कुछ बदलवाना था। और इकोनॉमी चेंज होने के कारण हमारे ऊपर बहुत प्रकार का इफेक्ट भी आया। लेकिन जब मैं इस इवेंट को स्टडी कर रहा था तो मुझे इसका एक बहुत स्पिरिचुअल रहस्य स्ट्राइक किया। इसको जब हमने डिटेल में एनालाइज किया तो इस इवेंट से हमको कई मैसेजेस मिले। और अगर हम उन लेसन्स को, उन बातों को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन को एक नया दिशा निर्देश, हमारे जीवन को एक नया मार्गदर्शन मिल सकता है। इस इवेंट से जो पहला मैसेज बहुत सुंदर हमको दिखा, वो पहला मैसेज था कि आज के जीवन में परिवर्तन कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन अवर लाइफ सडनली। हमें ये नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या होगा। ये तो नोटबंदी के टाइम में हमको फिर भी 4 घंटे 5 घंटे का समय मिला, लोगों ने काफी कुछ किया, लेकिन जीवन की सीक्रेसी, जीवन की अनसर्टेनिटी के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बता सकता है अगले मोमेंट पे किसी के साथ क्या होगा? हमको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी आज का मानव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वो आगे की चिंता करता रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन की एक अद्भुत कहानी है कि हम 40% अपनी जिंदगी जो है वो भूतकाल के अंदर जीते हैं। अगर कल ऐसा नहीं होता तो मेरा आज बिल्कुल डिफरेंट होता। और बाकी 40% हमारी जो जिंदगी होती है वो भविष्यकाल के लिए होती है कि कल क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। लेकिन केवल 10-20% हमारी लाइफ प्रेजेंट के अंदर होती है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि भूतकाल एक सपना है, भविष्यकाल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। तो आज अगर हम जिंदगी में प्रेजेंट को जिए और उस प्रेजेंट को हम सुधारेंगे तो हमारी जिंदगी में खुशी आ सकती है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज व्यक्ति जो है एक अद्भुत तरीके से मल्टीपल राहों पर फंसा हुआ है कि मैं ये करूं या ये करूं। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है और जिंदगी एक रेस बनकर रह गई है। सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ हमारी लाइफ का ब्रेक लग जाता है और फिर वही तलवार निकालकर अगले दिन जंग चालू हो जाता है। क्या हमने जिंदगी को रेस बनाकर सही किया? हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? एक महात्मा बहुत उपदेश देता था, सबको कहता था कि परमात्मा को याद करो, अपनी जिंदगी में ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन कोई सुनता नहीं था। वो ये कहते थे कि टाइम आएगा तो हम करेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो एक दिन वो जाकर एक नदी के किनारे बैठ गया। जैसे ही वो नदी के किनारे बैठा तो बहुत देर तक देखता रहा, उसको देखता रहा। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे बीत गए। तो थोड़ी देर बाद कुछ लोग जब उधर से जा रहे थे वो देख रहे थे कि ये बहुत देर से यहां बैठा हुआ है। उसके पास गए और बोले, महात्मा जी यह क्या कर रहे हो आप? तो कहते हैं, बेटा मुझे नदी पार करनी है। तो कहता है, आप कर लो नदी पार। तो कहते हैं, नहीं, मैं इस नदी के सारे पानी को बहने का इंतजार कर रहा हूं, जब ये सारा पानी बह जाएगा तो मैं नदी पार करूंगा। तो उसने कहा, महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो, इतने ज्ञानी होकर कभी ऐसा हो सकता है कि नदी का सारा पानी बह जाए और उसके बाद आप नदी को पार करो? कहता है, बेटा ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है। कहता है, हमसे क्यों सीखा? तो कहता है मैं तो इतने सालों से तुम्हें बता रहा हूं कि अपनी जिंदगी में परमात्मा को याद करो, अपनी जिंदगी में खुशी लाओ, लेकिन तुम ही कहते रहते हो थोड़े और बड़े हो जाएं, हमारे बच्चे हो जाएं, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएं, फिर थोड़े हम ये काम कर ले वो कर लें, फिर जिंदगी का अंत आ जाता है और तुम अपनी जिंदगी में धारणा कर ही नहीं पाते, तो उनकी आंखें बिल्कुल नम हो गई। तो अगर हमको जिंदगी में परिवर्तन लाना है, अगर जिंदगी में चेंज लाना है, तो वो कब लाना पड़ेगा बताओ? अपने स्थान पर जाके लाना पड़ेगा, कल लाना पड़ेगा, शाम को लाना पड़ेगा, या अभी लाना पड़ेगा बताइए? अभी लाना पड़ेगा। अपने मन को जरूर समझाइए। एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी में असूल बनाया, मैं यहां पर जब आया तो मैं केवल 6-7 साल का था, लेकिन मैंने एक बात को अपनी जिंदगी में असूल बनाया कि अगर कोई अच्छी बात है जो मेरे दिल को अपील करती है, उसको मुझे अभी धारण करना है, क्योंकि कल शायद मेरे को समय उसको धारण करने का नहीं मिले। तो पहला लेसन जो डिमोनेटाइजेशन हमको बहुत सुंदर नोटबंदी बता के गई कि अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना है। और आज हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक भागते रहते हैं, दौड़ रहे हैं, हमें पता नहीं किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, और अपने लिए ही समय हमको नहीं मिल पाता। आज कहते हैं ना भाई थोड़ा टाइम है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे भाई वक्त नहीं है। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में, जिंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। मां की लोरी का एहसास तो है, मां की लोरी का एहसास तो है, पर आज मां को मां कहने का हमारे पास वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसा दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या बात करें, पराए एहसासों की क्या बात करें, जब अपने सपनों के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं। तू ही बता है जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को एक पल जीने का भी वक्त नहीं। तो अपनी जिंदगी में अपने लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी जिंदगी को एक रेस बनाकर भागते चले जाएं और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमको टाइम ही ना मिले कि हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला पाए। मैं कहूंगा कि आज परमात्मा ने आपको अपने घर पर बुलाकर, आपके लिए बहुत भाग्य की बात है कि ऐसी जगह पर आप आए हैं जहां परमात्मा स्वयं नॉलेज देकर अपने बच्चों को अपना बनाता है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर आने के बाद हम दूसरा पवित्र संकल्प जो हम जरूर करेंगे कि आज के बाद हम अपनी जिंदगी को रेस नहीं बनाएंगे। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि आज के बाद जिंदगी का एक्सीलेटर हमको सवेरे से लेकर शाम तक नहीं दबाना है? सहजता लाइए, अपनी जिंदगी में आराम लाइए, अपनी जिंदगी में कंफर्टेबिलिटी लाइए। ऐसा नहीं कि भागते रहें, दौड़ते रहें, हम अपनी मंजिल सबकी वही है, जाना सबको वही है, लेकिन इतना जर्नी को अनकंफर्टेबल नहीं बनाइए कि हमारी जिंदगी में तनाव, हमारी जिंदगी में स्ट्रेस आता जाए। मेरा पहला प्रश्न आपसे आता है, पहला प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछूंगा और कुछ लोग मुझे इस बात का उत्तर जरूर देंगे। अगर हम सब लोग यहां पर डिसाइड करें कि हम सब लोग यहां से 40 किलोमीटर दूर या मे बी 100 किलोमीटर दूर पिकनिक पर जाएंगे, साथ जाएंगे, बसेस भर के ले जाएंगे, खाने पीने का सामान होगा, सवेरे जाएंगे एंजॉय कर शाम को हम लोग वापस आएंगे, कैसा आइडिया सबको लगा? मजा आया या नहीं? एग्री करते हैं नहीं बताइए, हाँ या नहीं, जोर से। सभी लोग चलेंगे, शाम को जब हम वापस आएंगे एंजॉय करते हुए आएंगे, एंड वी विल मेक मोर न्यू फ्रेंड्स, हमारे दोस्त नए बन जाएंगे। लेकिन जब मैं आपको इस कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूं तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपके संकल्पों में क्या परिवर्तन आता है। मैं आपको कहता हूं कि पिछले हफ्ते हम सब लोग इकट्ठे गए थे और एंजॉय करके वापस आए थे। अब इस हफ्ते हम लोग उसी जगह पर जाएंगे, लेकिन आज हम सब लोग, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आज हम सब लोग इकट्ठे नहीं जाएंगे, हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा। जैसे ही मैं आपको बोलता हूं कि हम इकट्ठे नहीं जाएंगे, हम लोग रेस लगाएंगे, किस प्रकार के थॉट्स आपको आने लगते हैं बताइए? एनीबडी? कंपटीशन, वंडरफुल वर्ड, पहला वर्ड उन्होंने एप्रोप्रिएट बोला कि कंपटीशन आ जाता है। कौन कौन कहता है तनाव भी आ जाएगा जब हम एक दूसरे के साथ रेस लगाएंगे? कौन कौन कहता है कि स्ट्रेस भी आएगा जब हम एक दूसरे के साथ, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं हम उसके साथ जब हम जा रहे थे लास्ट वीक तो हम मित्र की तरह जा रहे थे, एंजॉय करते जा रहे थे, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं तो हमारी जिंदगी में कॉम्पिटिशन, हमारी जिंदगी में तनाव, हमारी जिंदगी में एंजॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। और यही आज मानव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हमने अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया है कि आज हमारी जिंदगी एक उलझ चुकी है बुरी तरह, जलेबी की तरह। हाँ, ऐसे सुंदर तरीके से उलझ चुकी है कि उसको सुलझाने के लिए हम प्रयास भी करते हैं तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज हमको ये अपने जीवन में एक बात को धारण जरूर करना है कि हमारी जो ये जीवन की यात्रा है, हमारी सबकी मंजिल वही है, हमको वही जाना है। हमको अंत में जीवन के अंदर खुशी चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ रेस लगाकर, एक दूसरे को हराकर, एक दूसरे को नीचा गिराकर, अगर हम रेस जीत भी जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे मित्र जो हैं वो हमसे बहुत पीछे रह जाते हैं। हम उस रेस में आगे चले भी जाते हैं, अकेले उस मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं, हमने 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया कमा भी लेते हैं, लेकिन हम पीछे देखते हैं कि हमने अपनों को ही पराजित कर दिया है और उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को खो देते हैं। परमात्मा ये कहता है कि जीवन की यात्रा के अंदर ऐसा रेस मत लगाओ कि तुम्हारे जीवन के अंदर से सुख और शांति जो है वो चली जाए। जीवन में हम जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे को खुशी देते हुए चलते हैं, तो वो जीवन की यात्रा बड़ी सुखद हो जाती है। उस यात्रा के अंदर हम लोग एंजॉय करते हैं। और जब हम लोग रेस लगा रहे हों और आपकी वाइफ आपको कहें अरे रुक जाइए जरा 2 मिनट चाय और पानी पी लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे छोड़ो, ये तो रेस के अंदर है, बस हम वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर हम लोग खाएंगे और पियेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन वो वहां पहुंचना और खाना पीना कभी नहीं हो पाता है। और यही आज मानव की पीड़ा है कि मैं करूंगा, बस 2 दिन का काम है, बस 1 महीने का काम बचा है, बस 1 साल बाद की बात है, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन वो एक अगला क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आना होता। तो अगर हम लोग अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं तो पहला लेसन जो हमको सीखना होगा कि हमारा कल जो है वो काल के समान है, कल कभी नहीं आएगा। अगर मुझे जीवन में खुशी धारण करनी है, अगर मुझे इस रेस को रोककर अपने जीवन में शांति लानी है, तो सही समय कौन सा है? जोर से बताइए, अभी है, इस समय है। तो जो भी आप यहां पर सुन के जाएंगे उस दीप को, दूसरे दीपक को अपने जीवन में अभी प्रज्वलित कर लीजिए कि मुझे अपनी लाइफ को रेस नहीं बनाना है, अपनी लाइफ को रेस नहीं बनाना है। और आगे चलते हैं। हमने देखा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी हुई, तो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आई। और दूसरा मैसेज जो डिमोनेटाइजेशन का हमको बहुत सुंदर मिलता है वो ये है कि वैल्यू कैन बी लॉस्ट इन अ सेकंड। जो 1000 के नोट, जो 500 के नोट हम लोग संभाल संभाल कर रखते थे, हाँ, तिजोरियों में भरकर रखते थे, कई लोग गोदामों में भी भरकर रखते थे, उन 1000 और 500 की नोट 1 सेकंड के अंदर उनकी वैल्यू जो है वो खत्म हो गई। और जो 100-150 रुपए बाहर पड़े रहते थे हम उनको कहते थे अच्छा ठीक है शाम को आके हम ले लेंगे, सडनली उनकी वैल्यू हमारी लाइफ के अंदर बहुत बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार हम तो ये एक स्थूल मनी की बात करते हैं, ये प्रहार जो था ये हमारी इकोनॉमी केवल स्थूल मनी पे था, लेकिन हमने कभी अपने जीवन की वैल्यूज के बारे में इसमें सोचा? कभी हमने जीवन के मूल्यों को के बारे में भी इसके बारे में ध्यान दिया? कुछ बच्चे थे, वो अपने पिता जो कि अंतिम श्वासें गिर रहे थे उनके पास वो गए और उनको जाकर बोले कि पिताजी हमको कुछ शिक्षा दीजिए, हमको कोई ऐसी बात दीजिए जो हमारे जीवन में सदा हमारे साथ रहे। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरी माँ की दी हुई ये पुरानी जुराबे हैं, ये जुराबे मेरे को पहनाकर ही मेरा देह संस्कार करना। और जब वापस आओ तो मेरे इस कमरे के अंदर एक अलमारी है, वहां पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिख कर रखा है, उसको पढ़ लेना। तो वो बच्चे कहते हैं ठीक है पिताजी, बहुत प्यार करते थे और वो चले गए। फिर उनके पिताजी ने जब शरीर छोड़ा और उनको घाट पर ले जाया गया तो जब उनका संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमारे पिताजी कहते थे ये पुरानी जुराब पहनाकर उनका संस्कार करना है। तो सभी पंडित और ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल अड़ गए, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے شاستروں میں اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے, کوئی بھی پرانی چیز ہم پہنا کر نہیں کر سکتے. بہت سارے براہمنوں کو بھی بلایا گیا, اس پہ ڈسکشن ہوا, پھر الٹیمیٹلی ان کو سمجھایا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور انہوں نے بڑے بجھے من سے وہ پرانی جرابے جو ہیں وہ سائڈ میں رکھی اور اپنے پتا کا دیہ سنسکار کیا اور وہ اس اچھا کو پوری نہیں کر پائے. پھر جب وہ گھر آئے تو گھر جا کر سیدھے اپنے پتا جی کے کمرے کے اندر گئے, اور کمرے کے اندر جا کر انہوں نے کہا کہ وہ پوٹلی ہم کھولیں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرچی لکھی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. تو انہوں نے اس پرچی کو نکال کر جب اپنے سامنے رکھا اور اس کو پڑھا تو اس پر بہت سندر شبد لکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بچوں, تم نے دیکھا کہ میری کروڑوں کی دولت, میرے آٹھ آٹھ مکان, میری چھ چھ گاڑیاں, میرا سارا بزنس اور میرا سارا پیسہ, ان سب کی بات تو تم دور ہی چھوڑ دو, لیکن جب میں اس سنسار سے گیا تو میں اپنے ساتھ ایک پھٹی اور پرانی جراب بھی نہیں لے جا پایا. تو تم سدا اپنی زندگی میں دھیان رکھنا کہ جب تم اس سنسار سے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ جو بھی ستھول دھن اور ستھول چیزیں ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی, تمہارے ساتھ جائیں گے تمہارے سکرم, تمہارے اچھے سنسکار جائیں گے. تو جس چیز کی جیون میں ویلیو ہے وہ تمہارے ستھول جیون کے اندر ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے, تمہاری ریئل ویلیو تمہارے سد گڑوں سے ہے, تمہارے جیون کے مولیوں سے ہے. تبھی کہا گیا ہے کہ پیسہ آدمی کو امیر بنا سکتا ہے لیکن کسی ویکتی کے اندر رہیسیت جو ہے وہ اس کے سنسکاروں سے اور اس کے مولیوں سے آتی ہے, اور یہی آج ہم لوگ یہاں پر کرنے آئے ہیں. کہ اگر ہم لوگ کیول اس ویلیو کی بات کریں کہ یہ پیسہ ہے اور یہ چیز ہے, اس پیسے کو تو ہم یہاں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, ہمارے جیون کی سوچ, ہمارے جیون کی پرکریا, ہمارے جیون کی وچار دھارا کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو کیا آج ہم لوگ اپنے وچاروں کو سندر وچار بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں بتائیے. یس اور نو؟ تیار ہے نا. آج یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دھن تو وناشی ہے, اس دھن کے لیے بڑی سندر کسی نے کہا ہے, بہت مزیدار بات ہے جو میں کئی باری سناتا بھی ہوں, کہ زندگی ملی تھی کسی کے کام آنے کے لیے, زندگی ملی تھی کسی کے کام آنے کے لیے, بیت رہی ہے کاغذ کے پتے کمانے کے لیے, بیت رہی ہے کاغذ کے پتے کمانے کے لیے. کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر, کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر, نہ قبر میں جیب ہے نہ کفن میں الماری, نہ قبر میں جیب ہے نہ کفن میں الماری, اور یہ موت کے فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیتے. تو اگر ہمیں جیون کے اندر خوش رہنا ہے, اگر ہمیں جیون کے اندر سکارت اپنے جیون کو بنانا ہے, تو اپنی وچار دھارا, اپنے سنکلپوں کا خزانہ ہم کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا, اپنے جیون کے منو وگیان کو ہمیں پریورتت کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں بریک لگانا آوشیک ہے. ایسا نہیں سویرے سے لے کر شام تک ہم کو اپنے لیے سمے ہی نہیں ملتا, دو پل کھانے کا بھی سمے نہیں, کھانا بھی گاڑی میں کھا رہے ہیں, رات کو دس گیارہ بارہ ایک دو بجے کھانا کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بس ہم کو کمانا ہے, ہم کو بھاگنا ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں ویلیو آف دس منی کین بی لاسٹ ان اے سیکنڈ. ایک سیکنڈ کے اندر ہم اس پیسے کی ویلیو کو ختم کر دیتے ہیں, یہ کبھی بھی سماپت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہمارے جیون کی ادبھت اور دوسری سچائی ہے, میں کہوں گا سلائیڈ دکھائیں میڈم پلیز, کہ ہمارے جیون کی دوسری سچائی ہے کہ ہیپینس جو ہے, خوشی ہمارے جیون کا ہے, وہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں, وہ ہماری الانگ دی جرنی ہم کو ملتی ہے. جب بھی ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں, ایک بہت سندر ورڈ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ہیو اے ویری پلیزنٹ, کیا لکھا ہوتا ہے زور سے بتائیے, ہیو اے ویری پلیزنٹ جرنی لکھا ہوتا ہے. اب آپ کی یاترا جو ہے وہ منگل مئے ہو, کہیں پر یہ نہیں لکھا جاتا کہ آپ کا گنتویہ منگل مئے ہو, کبھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ منگل مئے ہو. منگل مئے ہمیشہ یاترا کو کہا جاتا ہے. تبھی آج آپ کی جیون کی یاترا کے اندر اس سمے خوشی ہے یا نہیں, یہ دیکھنا بہت آوشک ہے. اور یہ خوشی جو ہے ہم کو کیول بھوتک سادنوں سے نہیں مل سکتی, یہ خوشی جو ہے ہم کو کیول سانسارک سادنوں سے نہیں مل سکتی. آج ہمارے پاس پیسہ ہے, آج ہمارے پاس دھن ہے, ہمارے پاس دولت ہے, لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیجئے 2000 روپے لیجئے اور 2 کلو شانتی ہم کو خرید کر دیجئے. ہاں کبھی کسی نے سنا ہے؟ کبھی ہم یہ کہتے ہیں कि लीजिए 1 करोड़ रुपए लीजिए और 1 किलो प्यार हमको बाजार से खरीद कर ला के दीजिए, जो हम जीवन में चाहते हैं वो हमारी स्थूल धन और दौलत हमको कभी नहीं दे सकती। तो एक्चुअली में हम सबको ये समझना और जानना आवश्यक होगा कि जो चीज हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो हमारे जीवन के अपने मूल्य हैं और वो केवल हमको अपने मन को परिवर्तित करना होगा और ऑटोमेटिकली उसका एक्सपीरियंस हमको मिल जाएगा। तो किसी न किसी प्रकार से हमको इस रेस से बाहर निकलना होगा। अपनी जिंदगी में ठहराव लाइए, अपनी जिंदगी के अंदर 2-2 मिनट की ब्रेक लेकर अपने लिए और उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए जिसने आपको इतना सुंदर जीवन दिया, उसको याद करने के लिए समय जरूर निकालिए। जिंदगी में इतनी तेज एक्सलेटर मत दबाइए कि कभी परमात्मा को भी थप्पड़ मारकर ब्रेक लगाकर रोकना पड़ जाए कि बेटा बहुत तेज जा रहे हो, थोड़ा समय मेरे लिए भी इस जिंदगी के अंदर जरूर निकालो। तो क्या आप तैयार हैं थोड़ा थोड़ा समय अपनी जिंदगी में अपने लिए और परमात्मा को देने के लिए? बताइए यस और नो, है ना। तो दूसरी तीसरी एक्सरसाइज जो हम सबको करनी है, जो हम सबको करनी है कि मॉर्निंग के अंदर जब हम उठेंगे, यहां तो हम करते ही हैं, और इवनिंग के अंदर जब हम सोएंगे, सोने से पहले मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून के अंदर एक बारी लंच से पहले हम लोग उस परमपिता परमात्मा की याद के अंदर जरूर बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आज जब हम सवेरे खुले तो फटाफट नींद खुलते ही हम देख रहे हो हमारा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, किसी का व्हाट्सअप मैसेज तो नहीं आया, हाँ रात को फेसबुक पे किसी ने मैसेज तो नहीं डाला। पूरे दिन हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड बना लिया है कि आज दिनचर्या का आरंभ भी हम लोग एकदम प्रोग्राम्ड डिवाइसेस की तरह करते हैं, जैसे रोबोटिक लाइफ हमारी हो गई है। तो सभी ये संकल्प करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हाँ या नहीं बताइए। हाथ उठाकर कौन कौन कहता है कि यहां से जाने के बाद हम लोग अपनी दिनचर्या का आरंभ 2 मिनट से 5 मिनट के साइलेंस के अंदर और रात को भी सोने से पहले उस परमपिता परमात्मा की याद के अंदर करेंगे? बताइए हाथ उठा के कौन कौन कहता है हम जरूर करेंगे। करेंगे सभी लोग? हाँ जरूर करना है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे साथ जाएगी हम समझ लेते हैं वो हमारे जीवन के मूल्य, हमारे जीवन की धारणाएं ही, हमारे संस्कार हमारे साथ जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से हमको जो तीसरा मैसेज मिलता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और पावरफुल मैसेज है। वो पावरफुल मैसेज कहता है डोंट बैंक अपॉन बैंक्स एंड एटीएम। डिमोनेटाइजेशन जब हुई तो एटीएम में पैसा था लेकिन निकाल कितना सकते थे? 1,500 रुपया या 2,000 रुपया। बैंकों में हजारों करोड़ों रुपया कई लोगों ने रख रखा था या डिपॉजिट भी कर दिया लेकिन निकालने की लिमिट कितनी थी? 24,000 रुपया। उससे ज्यादा पैसा हम लोग नहीं निकाल सकते थे। तो हमारी लाइफ में हाथ क्या हुआ? जैसे हमारे लाइफ में इकोनॉमी के हाथ जो है वो ऐसे बांध दिए गए। लेकिन जब हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो हम ये देखें कि ये तो हमारे फिजिकल बैंक की बात है लेकिन इसी के साथ साथ क्या हम लोग अपने कर्मा बैंक को भी अकाउंट करते हैं? हम किस प्रकार के कर्म पूरे दिन कर रहे हैं, किस प्रकार का अकाउंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्या कभी हमने इसकी तरफ ध्यान दिया है? उस बैंक के अंदर हम लोग क्या अकाउंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं? क्या हम लोग अच्छे कर्म करके पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लेते हैं? और ये भी बहुत क्वेश्चन हो जाता है कि बैंक्स और एटीएम्स पर हम लोग रिलाय नहीं करें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम लोग ये एग्जामिन करें कि हमने अपने कर्मा बैंक में किस प्रकार के कर्म इकट्ठे किए हैं। आप देखो कि आज हमारी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज छोटी छोटी चीजों के कारण हमारी जिंदगी के अंदर तनाव आ जाता है। हम लोग दूसरों के लिए हेट्रेड, दूसरों के लिए जेलेसी अपनी लाइफ में इकट्ठी करते रहते हैं और कभी कभी दूसरों का बोझा भी हम अपने मन पर ढोते रहते हैं। एक बारी की बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2 यंग लड़के जो है भिक्षु वो जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में जब नदी पार करने का टाइम आया तो जब नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची बीच में फंसी हुई है। तो एक भिक्षु को दया आई और उसने उसको उठाकर नदी के पार रख दिया। तो दूसरे भिक्षु को बहुत गुस्सा आया कि इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था और इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस अपने मित्र से बात करना छोड़ दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, लेकिन उसके मन के अंदर यही संकल्प चलता रहता कि इसको, उस नारी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, इसने ये गलत काम किया। 5 दिन जब बीत गए और उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया तो वो अपने मित्र के पास वापस गया और उसे जाकर बोला कि मित्र तुमने बहुत गलत काम किया है। तो उसके मित्र ने बोला कि मित्र मैंने क्या गलत काम किया है। उसने कहा आज से 5 दिन पहले तुमने याद है कि जब हम नदी पार कर रहे थे तुमने उस कन्या को अपने सर पे उठा के रखा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि मित्र मैंने तो आज से 5 दिन पहले उसे केवल अपने सर पर 5 मिनट के लिए उठाया था, लेकिन तो तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने मन पर उठाकर घूम रहे हो, और ना केवल अपने मन पर उठाकर घूम रहे हो, तुमने अपने मन में इतना क्रोध पैदा कर लिया, तुमने अपनी सारी तपस्या को छोड़ दिया, और यह तुम्हारे जीवन का मूलभूत कारण है कि तुम्हारी तपस्या सफल नहीं होती है। तो आज अगर हम लोग देखें कि आज हमारी लाइफ के अंदर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हम लोग किसी न किसी व्यक्ति का बोझा अपने सर पर उठाकर घूमते रहते हैं। मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आगे और पीछे जो भी यहां पर बैठे हैं, ये एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है और आप सबको इसका उत्तर ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रख के देना होगा। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, यदि किसी व्यक्ति ने आपके लिए आज से 5 साल पहले कुछ बुरा किया हो या 10 साल पहले कुछ बुरा किया हो, उसके बाद वो आपकी जिंदगी में नहीं आया, किसी व्यक्ति ने आपके लिए 2 साल पहले बुरा किया हो और उसके बाद वो सडनली आज आपके सामने आ जाता है, किसी ने आपके लिए 1 महीने पहले बुरा किया हो और सडनली वो आज आपके सामने आ जाता है, 2 साल 1 साल 1 महीने पहले बुरा किया हो और वो सडनली आज आपके सामने आता है, तो आपके मन में उसके लिए ऑनेस्टली कैसी वाइब्रेशन निकलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है? ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा मुझे, बताइए। नेगेटिव बनेगा, कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत कम लोग पॉजिटिव, लेकिन मेजॉरिटी इस कंसेंसस में जाते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे मन से निकलती है। मैं पूछूं भाई साहब आपने क्यों बोला कि नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है, ऑनेस्ट आंसर दिया, इसके लिए आपको मुबारक, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे मन से उसके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है? कोई उत्तर देगा इस चीज के लिए, बताइए। एनीबडी? सॉरी, देखिए क्या होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब 2 साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरे लिए बुरा किया तो उस व्यक्ति के बुरा करने के बाद वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसकी बुराई को और उस बुरे व्यक्ति को मैंने स्थान कहां पे दे दिया, कहां दे दिया, अपने मन में दे दिया। और अब जब 2 साल बाद वो व्यक्ति जब मेरे सामने दोबारा आता है तो वो 2 साल पुरानी बात जो मेरे मन में दबी हुई है, जो कूड़ा है, जो नेगेटिविटी है, वो 2 साल पुरानी बात मेरे मन से बाहर निकलकर आ जाती है। लेकिन जब वो 2 साल बाद वो मन बाहर निकलकर आती है तो सबसे पहले वो नुकसान और कष्ट किसको पहुंचाती है, उसको पहुंचाती है, मुझे पहुंचाती है, बताइए, मुझे पहुंचाती है, वो परेशान सबसे पहले मुझे करती है। तो गलती किसकी थी, उस व्यक्ति की गलती थी, रखना मेरी भी गलती थी, बताइए, हमारी भी गलती थी। यही आज के मानव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम अपने कार्मिक अकाउंट्स पे फोकस ही नहीं करते। ये तो एक व्यक्ति की बात है, लेकिन आज हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने जो इतना प्यारा सा, सुंदर सा और कोमल सा मन दिया है, जिसको हमारे पास चॉइस है कि हम किन चीजों से भरें, किस प्रकार के विचारों से हम उसको ओतप्रोत करें, उसके अंदर हम लोग हर व्यक्ति की नेगेटिविटी, हर व्यक्ति का भाव स्वभाव जो है वो अपने मन में भर लेते हैं, और टाइम आएगा तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे मन से बाहर निकलती है और हमारे दिल से उस व्यक्ति के लिए नफरत निकलती है। एक यंग लड़का था, वो यंग लड़का जो है ना ऑटो रिक्शा चलाता था, हर एक का बहुत भला करता था, गरीब आदमियों को फ्री में भी छोड़ाता था, बूढ़े व्यक्तियों को पानी पिलाता था, लेकिन खुश रहता था। उसकी जिंदगी का केवल एक ही असूल था कि हर व्यक्ति को वो खुशी दे, जो सवारी जा रहा है उसको कुछ अच्छी सी बात सुनाए, और खुश रहकर वो अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो जाते जाते एक यंग लड़का अपनी बड़ी गाड़ी लेकर, BMW लेकर, उसको बड़ी बुरी तरीके से ओवरटेक किया और ओवरटेक करके एक्सीडेंट होते होते बचा। गलती उस लड़के की थी, दूसरे लड़के की, और उसके आगे आकर खड़े होकर बाहर निकलकर उसके ऊपर चिल्लाने लगा, जोर से चिल्लाया, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करो, ये करो, एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता। वो लड़का बहुत शांति से उसकी बात सुनता रहा और उसके बाद बोला कि भैया आप भी अपनी गाड़ी का ध्यान रखिएगा, नुकसान आपका ज्यादा होता और इसकी वजह से आपको कहीं मेजर नुकसान भी पहुंच सकता था, आप आगे चले जाइए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जब वो चला गया तो उसकी सवारी में एक दो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, वो बाहर निकले और उससे बोले कि बेटा तुम्हारी तो गलती नहीं थी, لیکن تم اس کو کچھ بولے ہی نہیں، تم اس کی بات کو شانتی سے سنتے رہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس سے بہت سندر اتر دیا۔ اس نے کہا کہ انکل میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جب کچھ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تو وہ من کو کوڑے دان بنا کر نکلتے ہیں۔ وہ گھر سے جب نکلیں گے تو اس کے اندر غصہ، اس کے اندر نیگیٹیوٹی، اس کے اندر کرودھ، اس کے اندر ایشیا، اس کے اندر چلانا، ایسی انرجی وہ بھر کر نکلتے ہیں۔ اور سامنے جو بھی ویکتی ملے گا، ہر ایک پر تھوڑا تھوڑا، کسی کے اوپر آدھا کلو، کسی کے اوپر ایک کلو، کسی کے اوپر دو کلو، وہ پھینکتے جاتے ہیں۔ ان کو اس میں چین ملتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم گندگی اس دنیا میں بکھیر رہے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں اپنے من کو ایک سندر پھولوں کا باغیچہ بنا کر نکلتا ہوں۔ میں ہر ایک کو دعائیں، ہر ایک کو خوشی اور ہر ایک کو شانتی دینے کی پریرنا لے کر میں نکلتا ہوں۔ وہ جو بکھیر رہا ہے، وہ جو بکھیر رہا ہے وہ اس کا کام ہے، لیکن جو میرا کام ہے، جو میں نے اپنے من کو دیا ہے، وہ میرا کام ہے، میں تو وہی کروں گا۔ تو یہ بہت سندر، اس بات کو سن کر بوڑھے ویکتی نے اس کو آشیرواد دیا۔ اور اس کی ایک پریرنا ہم کو یہی ملتی ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں پر اپنے من کو ایک تھاٹ دیں کہ ہم اپنے من کو کوڑے دان بنا کر نکلتے ہیں یا پھولوں کا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں۔ بتائیے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ باغیچہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو تیسری ایکسرسائز، جو تیسرا دیا آج ہم لوگ جلا کر جائیں گے، سبھی لوگ کریں گے تو میں بتاؤں، کریں گے سبھی لوگ کہ اپنے من میں سے، اپنے من میں سے کسی ویکتی نے، میں کچھ بھی ہو جائے اس کو معاف نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے 100 لوگوں کو معاف کر دوں گا لیکن اس کو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے لیے بہت برا کیا ہے۔ اس نے برا کیا وہ اس کا کرم تھا، لیکن معافی کرنا میرا کرتویہ ہے۔ اور ایک بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہم معاف جب کسی کو کرتے ہیں، ہم معاف دوسرے ویکتی کے لیے نہیں کرتے، ہم کسی کو معاف کر کے اپنے لیے پرماتما سے شانتی لے لیتے ہیں، ہم پرماتما سے من کا سکھ لے لیتے ہیں اور اس ویکتی کو بھی پوزیٹو وائبریشن دے دیتے ہیں۔ تو آج 3 دنوں کے لیے یہ ایکسرسائز ہر آتما جو یہاں پر بیٹھی ہے، ہر آتما سچیت ہو کر اپنے من سے اور اپنے دل سے پرن کرے گی کہ مجھے کسی نے کوئی بھی نقصان پہنچایا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں میں شمع نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، آج مجھے اسے شمع کر دینا ہے اور اپنے من میں شانتی کے پرکمپن اتپن کرنے ہیں۔ تیار ہیں یا نہیں ہیں بتائیے، یس اور نو؟ کون کون کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہو کر شانتی سے اس شمع کر دیں گے؟ بہت ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، زندگی کو میں نے کچھ اس طرح آسان کر، پرشن ہم اینڈ میں لیں گے، زندگی کو میں نے کچھ اس طرح آسان کر دیا کہ کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ تو لائف میں کمفرٹیبلٹی، لائف میں سکھ لانا بہت آوشیک ہے۔ دیکھو ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی میرا انٹروڈکشن دیا گیا نا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، تو آپ دیکھو کہ ہارٹ کا کام کیا ہوتا ہے، ہارٹ کیا کرتا ہے، دل پمپ کرتا ہے بلڈ کو پورے آرگنز کے اندر۔ تو دل کے اندر اگر بلڈ امپیور ہوتا ہے، اگر دل کا بلڈ جو ہے وہ امپیور ہوتا ہے، وہ پورے آرگنز کو، پورے شریر کو گندا بلڈ سپلائی کرے گا اور وہ انفیکشن کہلاتا ہے، انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ہے، پورے بلڈ کے باڈی کے اندر انفیکشن پھینک دیتا ہے۔ اسی پرکار اگر میں اپنے دل کے اندر نفرت اور گھرنا رکھوں گا، اگر میں اپنے دل کے اندر نفرت اور گھرنا رکھوں گا، تو میرے سارے باڈی کے تھرو اور میرے من کے تھرو کیسے وائبریشنز نکلیں گے؟ پوزیٹو نکلیں گے یا نیگیٹو نکلیں گے؟ بتائیے، نیگیٹو نکلیں گے۔ اگر میں گھرنا رکھوں گا تو نیگیٹو وائبریشنز نکلیں گے، اور جب میں اپنے دل کے اندر پوزیٹو وائبریشن رکھوں گا، اپنے دل کو ہیٹریڈ اور جیلسی، نفرت اور ایشیا سے مکت کر دوں گا، تو ہر آتما کا کلیان میں سہج روپ سے کرتا رہوں گا۔ ایک بات ہم سب کو اپنے کن پٹل کھول کر سمجھ لینی چاہیے کہ جس من کے اندر نفرت ہے اور جس دل کے اندر ایشیا ہے، وہ ویکتی نہ کبھی خود خوش رہ سکتا ہے، نہ کبھی کسی کو خوشی دے سکتا ہے۔ تو اگر مجھے زندگی کو آسان کرنا ہے تو تیسری ایکسرسائز کرنی پڑے گی، ہر ایک کو معاف کرتے جائیے۔ کسی نے کچھ کیا، اچھا کوئی بات نہیں، ہو گیا نا، آگے نہیں کرنا، کیوں کیا، کیسے کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں پتا ہے اس نے ایسا کیا، اس چھوٹی سی بات کو، روئی کو رائی اور رائی کا ہم پہاڑ بنا کر ایسکلیٹ کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا سٹریس لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ آدھیاتمکتا ہم کو یہی بتاتی ہے کہ بہت سمے ویسٹ نہ کر کے، چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو وہیں پر ہم کو سماپت کر دینا چاہیے. چوتھا میسج جو ڈی مونیٹائزیشن سے ہم کو بہت سندر ملا وہ میسج یہ ملا کہ نقلی چیزوں کا نقلی نوٹوں کا ہمارے جیون میں کوئی استتو نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں سبھی لوگ اس بات کو؟ ہاں. جیسے ہی بینک کے اندر کوئی نقلی نوٹ ڈپازٹ کرانے گیا تو بینک نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا, اور ایکسپٹ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ یہ کیسے آیا, یہ کہاں سے آپ کے پاس آیا, ہے نا. تو یہ تو ہمارے کیول پریکٹیکل نوٹ کی بات ہوئی. لیکن اسی پرکار کبھی کبھی ہم اپنے کرموں کے اوپر بھی دھیان دیں کہ کیا ہمارے کرم جو ہیں وہ کرم ہمارے صحیح ہوتے ہیں, کیا ہمارے کرم تو غلط نہیں ہوتے, کیا ہمارے کرموں کا اکاؤنٹ بھی کبھی فیک یا کبھی ایسا تو نہیں ہوتا جو کسی کو کشٹ پہنچا سکتا ہے. ایک بہت سندر ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اور میں آپ سب لوگوں سے آگے جو بیٹھے ہیں خاص کر وہ اس کا اتر ضرور دیں کہ اگر ہم لوگ ایک سبزی والے کے پاس, ایک فروٹ والے کے پاس سنترا لینے جاتے ہیں, آپ سنترا لینے گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی سنترا کیسے ہے, تو وہ بولے گا بھائی 50 روپے کلو ہے باؤ جی, بالکل پرفیکٹ ہے, مزے دار ہے, آپ لے جاؤ, کھاتے ہی آپ دوبارہ میرے پاس آؤ گے. اور آپ نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے تو اتنا کہہ رہا ہے تو دے 1 کلو سنترا مجھے دے دے. اور 1 کلو سنترا لے کر آپ جب گھر پر جائیں اور اس سنترے کو کھاتے ہیں تو اس 10 سنتروں میں سے 2 تو سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور باقی سنترے اتنے کھٹے ہوتے ہیں کہ آپ کا کھانے کا من نہیں کرتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کے من میں سے اس سنترے والے کے لیے کیسی وائبریشن نکلے گی, پازیٹو نکلے گی یا نیگیٹو نکلے گی, بتائیے. نیگیٹو نکلے گی, غصہ بھی آئے گا اور سڈنلی آپ کا متر آ گیا, اچھا سنترے کھا رہے ہو, ذرا 2 پا کے ہمیں بھی دینا, کیونکہ نہیں بھائی یہ سنترے کھانے لائق نہیں ہے تو مت لے. کہتا یار میں بھی لینے جا رہا تھا کہاں سے لوں, تو آپ کیا کہیں گے, اس کے پاس بھیجیں گے یا کبھی نہیں بھیجیں گے؟ کبھی نہیں بھیجیں گے. اس کے ایک نیگیٹو کرما نے اس کی ساری کلائنٹیل کو ڈسٹروائے کر دیا. اب میں آپ سے دوسری سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں, آپ پھر 1 کلو سنترا کسی کے پاس لینے گئے اور وہ ویکتی آپ کو بولتا ہے کہ باؤ جی سنترے تو ہیں لیکن آج آپ کے لائق نہیں ہیں, آپ ایسا کریے آپ کل یا پرسوں آئیے گا, بڑھیا مال میں لاؤں گا تب آپ لے کر جائیے گا. تو آپ بھی بنا لیے سنترے چلے جاتے ہیں. پرسوں جب آپ کا لینے کا من کرتا ہے تو آپ سنترے لینے کس کے پاس جائیں گے, بتائیے, اسی کے پاس جائیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ 50 روپے نہیں ہے, 60 روپے کلو ہیں لیکن بالکل مزے دار ہیں, آپ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے؟ آپ بالکل خریدیں گے. آپ خرید کر جب اس کو گھر پر آتے ہیں اور آ کر کھاتے ہیں, وہ سنترے بڑھیا نکلتے ہیں, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کہیں گے دیکھو مال بالکل بڑھیا دیا, اس کو نہیں دینا تھا پرسوں نہیں دیا آج دیا, 10 روپے مہنگا دیا لیکن چیز بہت بڑھیا دی مجھے. اس کے بعد آپ کا متر آتا ہے کہ یار میرے کو بھی سنترے لینے, کہاں سے خریدوں, کس کے پاس بھیجیں گے, کس کے پاس بھیجیں گے, اسی کے پاس بھیج دیں گے, بھائی بالکل پرفیکٹ مال ہے اس کے پاس, آنکھ بند کر کے لے لیو, بالکل صحیح کام تیرے لیے کرے گا. ہے کیا ہوا کہ ایک باری تو اس نے کچھ ایک دن کے لیے اپنا بزنس کھو دیا, لیکن اس نے آنےسٹی کا گن اپناتے ہوئے, اس نے سچائی کا گن اپناتے ہوئے, اپنے آنےسٹی کو آگے رکھتے ہوئے اپنے لیے لانگ ٹرم بزنس کو انکریز کر لیا. اور تبھی کہا جاتا ہے کہ جو دھن جو بزنس جو ہے جو دعائیں کماتا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پیسہ نہیں کمائے گا, لیکن جو بزنس کیول پیسہ کماتا ہے اور دعائیں نہیں کماتا وہ کبھی نہ کبھی آگے جا کر گر جاتا ہے. تو آج ہم سب کو بھی اندر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کس پرکار کے کرم اپنی لائف کے اندر کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ جیسا ہم کریں گے وہ گھوم کر واپس آٹومیٹکلی میرے پاس آئے گا, کسی نہ کسی ماترا میں وہ میرے پاس ضرور آئے گا. تو یتھارتھ روپ سے ڈی مونیٹائزیشن ہم کو یہ بہت اسپرچل میسج دے کر جاتی ہے کہ ہم بھی اپنے کرموں پر دھیان دیں. اگر میں کسی آتما کو, اگر میں کسی ویکتی کے اوپر کرودھت ہوتا ہوں, میں کسی ویکتی کے اوپر تیزی سے چلاتا ہوں یا اس کو ایک نیگیٹو انرجی دیتا ہوں, میں اس کے دل کو دکھی کرتا ہوں, تو آج کا سائنس کا لا یہ کلیئرلی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ آم کا بیج بوؤ گے تو اس میں سے تربوز نہیں نکل سکتا ہے. तो आज हर आत्मा को खुशी और शांति दीजिए। अपने बिजनेस के अंदर भी जब आप आए, हमने कहीं देखे, हमारे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट के अंदर भी कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस तो लौकिक रूप से करेंगे लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी खुशी की बातें भी उन लोगों को दे देते हैं, कुछ ऐसी चीज छपा कर रखते हैं कि परमात्मा का मैसेज भी उनको देते हैं और भाव भी ठीक लगाते हैं और अपना जीवन का यापन जो है बहुत खुशी से कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा बिजनेस एक दूसरे के साथ भी चलता रहता है। जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जब मैं आप लोगों से इंटरेक्शन में आता हूँ, तो हम एक दूसरे से बातचीत डेवलप करते हैं। लेकिन उस बातचीत के अंदर अगर हमारा प्यार का एटमॉस्फेयर बना रहे, अगर हम एक दूसरे के साथ हार्मोनियस तरीके से प्यार से एक दूसरे से बात करेंगे, तो वो रिलेशन जो है, वो खुशी जो है, वो ऑटोमेटिकली लौट कर मेरे पास वापस आएगी। लेकिन अगर मैं किसी के लिए क्रोध करता हूँ, क्रोध जो हम एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात हम हमेशा समझ कर चलें, केवल एक बात हम हमेशा समझ कर चलें कि जिस क्रोध की अग्नि में हम दूसरे व्यक्ति को जलाना चाह रहे होते हैं, उस क्रोध की अग्नि में सबसे पहले हम खुद जल रहे होते हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा क्रोध रखना सही है? ऐसा बिजनेस करना सही है? परमात्मा कहता है ऐसा बिजनेस करना ठीक नहीं है। भाई हम बिजनेसमैन हैं, तो मुनाफे का बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस करना है जो मेरे मन को खुशी दे और मेरे मन को शांति दे, ऐसा बिजनेस हमको करना है। तो करेंगे सभी लोग ऐसा बिजनेस, यस और नो बताइए, करेंगे या नहीं? है ना। तो तीन दिन के लिए चौथी एक्सरसाइज जो आज दीपक हम अपने जीवन में जलाकर जा रहे हैं कि आज के बाद केवल तीन दिन के लिए, केवल तीन दिन के लिए मुझे क्रोध करना है या नहीं करना? जोर से बताइए, करना है या नहीं करना? क्रोध ऊपर से नहीं होता, क्रोध मन से भी होता है। मन का क्रोध होता है इरिटेशन, मन का क्रोध होता है इरिटेशन और जेलेसी और फ्रस्ट्रेशन। हाँ, बहुत इरिटेटिंग आदमी, ऐसे बात मत करो। मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने उसे कुछ बोला नहीं, लेकिन वैसे बहुत इरिटेटिंग आदमी। अरे कोई इरिटेटिंग नहीं होता। अभी आपने सुना था ना गिरीश भाई क्या बता रहे थे, सिचुएशन कभी भी इरिटेटिंग नहीं होती, आपका मन और आपका चेहरा हमेशा स्माइलिंग रहे। जो व्यक्ति आपके लिए इरिटेटिंग है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए इरिटेटिंग ना हो। तो ये हमारा रिस्पॉन्स, हमारी मनोस्थिति कैसी है, ये डिटरमिन करता है कि हम किस प्रकार का रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो आज तीन दिन के लिए जब हम यहाँ पर हैं, हम क्रोध को भूल कर उसकी जगह प्यार को और लव को अपने जीवन में इनकलकेट करेंगे। अभी बाहर निकलेंगे ना तो फोन आएगा, बिजनेस में ऐसे हुआ, ये हुआ, कोई बात नहीं, शांति से हो गया ना। अब इसका सॉल्यूशन ये है, उसको सॉल्यूशन के तरीके से हमको निकालना है। कोई स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना, परमात्मा का साथ आप रखेंगे। हम अपने जीवन के यथार्थ अनुभव से बता रहे हैं, आप तो लौकिक बिजनेस करते हैं, हम तो ऑपरेट करते हैं जिसमें ह्यूमन लाइव्स होती हैं, लेकिन हमने देखा कि जब परमात्मा को हम सामने रखते हैं तो वर्स्ट से वर्स्ट केस भी जब हम डील करते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी हम डील करते हैं, परमात्मा उससे बहुत सहज रूप से आपको निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी मनोस्थिति बहुत शांत और बहुत पावरफुल होती है। तो चेक करना है कि क्या मेरा रिस्पॉन्स सही और प्रॉपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा मैसेज जो बहुत सुंदर हमको नोटबंदी से मिलता है, डिमोनेटाइजेशन से मिलता है, स्मॉल इज बिग। हाँ, बड़ी बड़ी चीजों की, बड़े बड़े नोटों की वैल्यू नहीं रही, ऐसा रहा ना, 1000 और 500 की वैल्यू नहीं रही, केवल 50 और 100 रुपए की वैल्यू कुछ टाइम तक हमारे जीवन के अंदर रही। इसी प्रकार अगर हम लोग अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन को हम अंदर जाकर उसको गहन रूप से देखें, तो हमारे जीवन में कोई बड़े कर्म इंपॉर्टेंट नहीं होते। हम क्या कर्म कर रहे हैं, बिग कर्मा इज नॉट, सिस्टर कैन यू प्लीज शो दी स्लाइड्स, बिग कर्मा इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूइंग अ गुड कर्मा। क्या हमारा कर्म यथार्थ है, क्या हमारा कर्म अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हमने परिवार को हाईटेक बना दिया है। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, आज हमारे पास आईफोन है, आईपैड है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है, लेकिन आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हाई टेक हमारी जीवन में आ चुका है, लेकिन हमारे जीवन से हाई टच जो है, हमारे जीवन से कंपैशन है, हमारे जीवन से जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं खत्म हमारे जीवन में हो चुका है। और तभी आप देखेंगे कि एक जीवन का, एक फैमिली लाइफ का जो यथार्थ आधार होता है वो है एक दूसरे के साथ समय बिताना। क्या आज हम लोग एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार से बातें करते हैं? क्या आज जिंदगी में मैंने अपने आप को इतना तो नहीं उलझा रखा कि मेरे को अपने परिवार वालों के साथ बैठकर उनके साथ दो पल का खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता? कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों को केवल बिस्तर पे ही बड़ा होते हुए देखा है, क्योंकि जब मैं सवेरे जाता हूं तो वो लोग सो रहे होते हैं और जब मैं रात को आता हूं तो वो लोग सो चुके होते हैं। क्या इसी प्रकार का बिजनेस तो हम लोग अपनी लाइफ में नहीं कर रहे? और फिर आज हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ नहीं चलता। आज आपका परिवार जो है आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आज आपका परिवार आपसे मांगता है केवल तीन चीजें। केवल तीन चीजें यदि हमारे परिवार के अंदर होती हैं तो हमारा परिवार सुखी परिवार हो जाता है। जिस परिवार के अंदर प्यार है, जिस परिवार के अंदर हम एक दूसरे को समय देते हैं और जिस प्यार परिवार के अंदर हम एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, वो परिवार जो है वो यथार्थ परिवार है। आज एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अपने जीवन का भी एग्जाम्पल बताता हूं कि हमारे यहाँ तीन डॉक्टर्स हैं। हमारी फैमिली में हमारे माता पिता भी डॉक्टर्स हैं, एक फिजिशियन गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, और मेरी छोटी बहन जो है वो एक बिजनेसमैन है और काफी बड़ी कंपनी वो रन करती हैं। लेकिन सब लोग अपने कार्य व्यवहार में प्रैक्टिकली बिजी रहते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक नॉलेज में फॉलो करते हुए हम लोग एक दूसरे को पूरा समय देते हैं। एक बड़ी सुंदर बात जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि रात को चाहे हम कितने भी बजे आए, कई बार हम बहुत लेट हो जाएं तो एक्सेप्शनल है कि एक या दो मेरे कोई केस फंसने के कारण ऐसा हो जाए, लेकिन रात को जब हम बैठते हैं तो रात का भोजन हम सब लोग साथ बैठकर टेबल पर करते हैं। उस टेबल पर एक ही प्रकार का भोजन होता है, टेलीविजन बिल्कुल ऑफ होता है, कोई न्यूज नहीं, कोई सोप ओपेरा, कोई ऐसा सीरियल हम लोग नहीं देखते, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हम लोग नहीं चलाते, लेकिन बैठकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहा। विचार होते हैं, क्लैशेस होती हैं। एक बच्चा जब अपने दिल की बात अपने माँ बाप को बोलेगा तो वो अपनी ओपिनियन देते हैं, कई बारी ईगो क्लैशेस भी होंगे, कई बारी ऐसी बातें भी होंगी जिसमें टकरार होगा, लेकिन एक बॉन्डेज, एक इमोशनल कनेक्शन हमारा बनता जाता है। क्या आप समझते हैं हमको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताइए कौन कौन समझता है ये हमको जरूर करना चाहिए। अपनी जिंदगी में अपने परिवार वालों को समय देना अति आवश्यक है। अभी एक बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है इंडिया की, उनका जब इंटरव्यू लिया गया, खरबों की मालिक है, तो उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल क्या था, आपकी जिंदगी का सबसे कंफर्टेबल पल क्या था जो आपकी जिंदगी में सदा आपको ध्यान रहता है। तो उन्होंने दिल को छू देने वाली बात की, उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे माता पिता ने कभी समय नहीं दिया, मेरे को मेरे दादा और दादी ने पाला, लेकिन मेरे को ध्यान है कि बचपन में मैं एक बार ही बीमार हुई थी और बहुत ज्यादा बीमार थी, तो उस समय मेरे माता पिता मेरे सिरहाने पर आके बैठे थे और उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा था और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था। उस दिन, उस रात का जो मोमेंट है वो मेरे जीवन में अभी भी एक अमिट छाप छोड़कर गया हुआ है। तो आपके जीवन के अंदर आप कुछ क्षण ध्यान रखते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। आज बहुत आवश्यक है कि अपने इस जीवन के अंदर हम छोटे छोटे परिवर्तन लाएं। इसी प्रकार, ये तो हमारे इस जीवन की बात हुई, हमारा प्यारा परमपिता परमात्मा जो स्वयं आकर हमारे जीवन को सुंदर बना रहा है, और जब हम कहें कि परमात्मा को याद करने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए आपके पास टाइम है, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, आज थोड़ा सा मैं ज्यादा बिजी हूं, मैं कल याद कर लूंगा। आज हम परमात्मा को अनफॉर्चुनेटली केवल दो कारणों से याद करते हैं, केवल दो कारणों से। 99% ऑफ द पीपल केवल दो कारणों से याद करते हैं, या तो हम परमात्मा को जरूरत के कारण याद करते हैं कि हे परमात्मा मेरे लिए ये करा देना तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, या हम परमात्मा को डर के आधार पर याद करते हैं। और ये आधार जो है दोनों के दोनों बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कोई भी याद, कोई भी कनेक्शन जो है उसका आधार होता है लव, उसका आधार होता है टाइम, और उसका आधार होता है अटेंशन, और इसके साथ साथ हमारा फेथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अपने मन से एक मिनट के अंदर पूछिए कि क्या मेरा जीवन जिस तरह से मैं चलाना चाह रहा हूं उस तरह से चल रहा है। आज जब मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मैंने उन्हें भौतिक रूप से तो सब कुछ दे दिया, लेकिन उनको वो भौतिक आईफोन आईपैड और स्मार्टफोन नहीं चाहिए थे, उनको मैं चाहिए था, उनको मेरा समय चाहिए था, उनको मेरा प्यार चाहिए था, उनको ये चाहिए था कि कोई माँ बाप मेरी बात दिल से प्यार से सुने। और जब बच्चे अपनी बात सुनाने आते हैं तो हम कहते हैं तुम रहने दो, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा काम करो, तो वो बच्चे मुरझा जाते हैं, चले जाते हैं और अपनी बात अपने मित्रों के पास रखते हैं। जब मित्रों के पास रखते हैं तो उनका कनेक्शन, उनका कम्युनिकेशन अपने मित्रों से ज्यादा क्लोज हो जाता है, और तभी आज बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर क्रिएट हमने किया है तो इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी अपनी ही होगी। और यही परमात्मा आकर करता है, वो ये कहता है कि जब सत्ययुग आएगा तो आएगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर आकर तेरे इस जीवन को सत्ययुग बना देता हूं, तेरे इस जीवन के अंदर तेरी सोच, तेरे बोल, तेरे कर्मों को ऐसा मॉडिफाई करता हूं कि तेरे जीवन के अंदर खुशी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए तैयार है या नहीं बताइए, यस और नो? तो बहुत जरूरी है, अपने इस जीवन में परिवार को टाइम जरूर देना पड़ेगा। एक आखिरी पॉइंट जो बहुत सुंदर हमारे सामने आता है वो ये आता है कि जो डिमोनिटाइजेशन बताए कि सोर्स मैटर्स, हाँ, जब हम जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए मनी तो वे पूछते हैं कि कहां से, ये क्या चीज है, कितना इस चीज का आप गवर्नमेंट क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये कहां से आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, उसका सोर्स क्या था, उसका सोर्स क्या था। तो ये तो केवल मनी का सोर्स गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब हम कोई कर्म करते हैं और परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा बहुत सुंदर बात बोलता है, परमात्मा ऐसी बात बोलता है जो हमारे दिलों को छू जाती है। परमात्मा कहता है तूने भी कर्म किया और तूने भी कर्म किया, तूने एक रुपया दिया और तूने एक करोड़ रुपया दिया, लेकिन मैं तुझसे केवल एक बात पूछूंगा कि तेरा एक करोड़ रुपया देने के पीछे तेरी इंटेंशन क्या थी और तेरा एक रुपया देने के पीछे तेरी इंटेंशन क्या थी। परमात्मा केवल हमारी इंटेंशंस पर, हमारी मनोस्थिति पर काम करता है। अगर परमात्मा से भी हम लोग ऐसा बिजनेस करने लगेंगे तो परमात्मा को हराना इम्पॉसिबल है। तभी परमात्मा कहता है कि गरीब का एक रुपया और अमीर का एक करोड़ रुपया मेरे दरबार में बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्मों पर अटेंशन जरूर दें, कि हर कर्म जो मेरा हो रहा है हर कर्म पर मेरा अटेंशन हो कि क्या ये प्रभु प्रेरणा से और प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसकी परमात्मा की गाइडेंस के अनुसार, उसकी श्रीमत के अनुसार जिस तरह वो चाहता है उस तरह मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए आखिरी बात जो हमारे सामने आती है कि सब लोग डिमोनेटाइजेशन के बाद आगे की प्लानिंग के अंदर लग गए कि आगे हमको क्या करना है, कैसे सेटल करना है। कुछ लोगों ने सेटल भी किया, इधर करा पैसा, उधर करा पैसा, लेकिन आज बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने आत्मा का अकाउंट, अपने मन के थॉट्स का भी अकाउंट, उनका भी सेटलमेंट करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर आध्यात्मिकता को लाना पड़ेगा, अपने मन की गहराइयों के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे मन के द्वारा हो रहा है, मेरी आत्मिक शक्ति के द्वारा हो रहा है। और आत्मा जो है वो तीन प्रकार से कार्य करती है। आत्मा सबसे पहले सोचती है, जो आज आपने सुना होगा, संकल्प, मन जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है, जो संकल्प उत्पन्न कर रहा है। दूसरी जो आत्मा की शक्ति होती है वो होती है बुद्धि, जो निर्णय लेती है कि मन ने विचार लिया और बुद्धि निर्णय ले रही है कि मुझे कर्म करना है या नहीं करना है। और अगर वो कर्म अच्छा है और विचार अच्छा है और बुद्धि उस पर स्टैंप लगाती है तो मैं उसको कर्मों में ले आता हूं और मैं उसको कर्म में कर एक अपना अकाउंट क्रिएट करता हूं जो मुझे संस्कार दे देता है। तो इसीलिए आज बहुत आवश्यक है कि आत्मा 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 आत्मा, दिन और रात आप आत्मा सुनेंगे, उस आत्मा को सुन के आप मूंझना नहीं। आप ये मत समझना कि आत्मा है क्या, आत्मा तो मुझे दिख ही नहीं रही। आत्मा केवल एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपके मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा आपके जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जब हम इसको साइंस के रूप से देखते हैं तो साइंस, मुझे गर्व होता है बताते हुए कि साइंस आज क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि हमारे ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड के साथ में एक क्लियर एंटिटी होती है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है गॉड स्पॉट। गॉड स्पॉट का नाम दिया है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, गॉड स्पॉट कह सकते हैं, बीइंग कह सकते हैं, साइकी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, या कुछ भी हम स्पिरिट कह सकते हैं हम नाम दें, वो आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही है। तभी आप देखेंगे कि संज्ञाएं, आप सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनना तो आपको लाइफ में हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि तभी संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा आत्मा को दी जाती हैं। कभी आप में से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं सुना होगा कि ये परम शरीर है, कभी ये नहीं सुना होगा ये पुण्य शरीर है, कभी ये नहीं सुना होगा ये महान शरीर है। संज्ञाएं हमेशा आत्मा को दी जाती हैं, ये परम आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है। ये क्लियरली शो करता है कि हमारे जीवन का जो सत्य है वो ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर रहने वाली एनर्जी, कॉन्शियसनेस या आत्मा है। और जब हम उस आत्मा को समझ लेते हैं, हम उस आत्मा की शक्ति को जान लेते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे हम काले हों, गोरे हों, हाँ किसी देश के हों, किसी भी उसके अंदर हों, हर व्यक्ति के अंदर वो आत्मा, वो पॉइंट ऑफ लाइट विद्यमान है। और वो विद्यमान आत्मा जो है वो परम किसके साथ कनेक्ट करेगी, हैं किसके साथ कनेक्टेगी? पर आत्मा जो है परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करेगी या परम शरीर के साथ करेगी, बताइए? वो महात्मा के साथ करेगी या परमात्मा के साथ करेगी, बताइए? परमात्मा के साथ करेगी। सिंपल साइंस, आप उत्तर जानते हैं, इसको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है कि आत्मा को अगर हमें एनर्जाइज करना है, अगर हमारे जीवन की जो सच्चाई है वो शरीर नहीं है वो आत्मा है, अगर मेरे जीवन की जो सच्चाई है वो शरीर नहीं आत्मा है, तो योग भी लगाना पड़ेगा, तो वो शरीर को महान शरीर के साथ नहीं लगाना पड़ेगा, वो आत्मा को ही परम पिता परम आत्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। और उसी लिए आज का मानव जो है वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई सांपों की पूजा करता है, कोई नदी में डुबकी लगाता है, हर व्यक्ति उस परमात्मा की खोज के अंदर भाग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो कुंभ का मेला है, डुबकी लगा लेते हैं और हमारी आत्म स्नान हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। अरे परमात्मा ये कहता है कि ऐसे शरीर को स्नान कराने से आप लोग पाप मुक्त हो जाएं, तो चलो हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आपको ओपन ऑफर देते हैं कि मंडे टू वेडनेसडे फ्राइडे जो मर्जी विकर्म करो, सैटरडे और संडे जाके हरिद्वार में स्नान करेंगे और पवित्र होकर आ जाएंगे। हा? कितना ईजी हो जाएगा हमारी लाइफ, कोई मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ है। कार्मिक अकाउंट कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप केवल स्नान करो, ये उस शारीरिक स्नान की बात नहीं है, ये उस ज्ञान गंगा से स्नान की बात है। आत्मिक ज्ञान गंगा को जब हम नहलाते हैं परमात्मिक ज्ञान के द्वारा, तो हमारी आत्मा पवित्र होकर उस परमात्मा की मत पर चल के सदोगति को ऑटोमेटिकली पाती है। और यही कारण है कि आज सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर आज हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हैं। इतने चैनल्स आ गए, इतने गुरु आ गए, लेकिन सब चीज आप देखेंगे कि हमारे और उसमें ही हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये नहीं पहचान पाते कि आज आवश्यक है कि हम अपने को आत्मा समझकर उस ज्योति बिंदु निराकार परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो हमारा कम्युनियन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन बहुत सिंपल है, मेडिटेशन सीखना कोई बड़ी बात है ही नहीं, और मैं आप में से एक एक व्यक्ति, जितने भी यहां पर 2-3-4 हजार लोग बैठे हैं, मैं आपको केवल 3 संकल्प दूंगा, और 3 संकल्प के द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा हमारी आत्मिक पावर के, आत्मा के अंदर कितनी बड़ी पावर है। तो आपके लिए, आपको उसके लिए मेरे साथ एक यात्रा पर चलना पड़ेगा। तैयार हैं सभी लोग? एग्री। मैं आप लोगों को, सभी को, सभी अटेंटिवली आराम से बैठिए, मैं आपको केवल 3 प्रश्न पूछूंगा, केवल 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न हम लोग 30 सेकंड के अंदर पूरे करेंगे, और आप जवाब देंगे कि क्या आपने वो यात्रा कंप्लीट की या नहीं कंप्लीट की। मैं यहां पर बैठा बैठा आप सबको पहला थॉट देता हूं, पहला विचार देता हूं कि यहां बैठे बैठे आप सब लोग अपने घर पर, जहां पर आप रहते हैं वहां पर चले जाइए, अपने घर, जिस लौकिक घर में आप रहते हैं, चाहे वो बंगलो है चाहे वो फ्लैट है, उस घर के अंदर आप लोग चले जाइए। कौन कौन पहुंच गया वहां पर, हाथ उठाकर बताइए। सभी लोग प्रैक्टिकली पहुंच गए हैं। अब ऐसा करिए, उस घर के अंदर घुसकर आप अपने बेडरूम के अंदर जाइए, बेडरूम के अंदर अपने बेडरूम का अवलोकन करिए, वहां से बाहर निकलिए सभी लोग, बाहर निकलकर चलिए किचन के अंदर, हम आपके किचन के अंदर जाते हैं, किचन के अंदर ग्लास उठाइए, जहां पर पानी रखा है उस पानी को भरिए और एक ग्लास पानी आप पी लीजिए। पीकर फिर आप अपने ड्राइंग रूम में आइए, ड्राइंग रूम में आकर आप अपने घर से बाहर आ जाइए, और बाहर आकर फिर आप उस जर्नी को करकर यहां पर वापस आ जाइए। कौन कौन अपने घर में घूम के आया, सभी लोग हाथ उठाकर बताएं। एवरीबडी 100%। आप देखो ना, वो घर यहां पर है, ना वो ड्राइंग रूम यहां पर है, ना वो किचन यहां पर है, ना वो यात्रा का टाइम यहां पर है, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति के द्वारा, आपकी मन की शक्ति के द्वारा, 1 सेकंड के अंदर आप लोग वो यात्रा कर यहां पर घूमकर आ गए। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि डॉक्टर मोहित आप आपके घर चले जाइए, आप आपके घर जाइए, तो मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इमेजिनेशन कर रहा हूंगा कि इनका घर ऐसा होगा, लेकिन आप जो कर आए वो रियलाइजेशन थी, वो आपकी एक्चुअल जर्नी थी। तो इसीलिए जब हम इस शरीर को, आज हमें पहचान मिली कि हमारा शरीर सत्य नहीं है, इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा सत्य है, तो आत्मा की पहचान जब हमें मिल जाती है, तो आत्मा के पिता की पहचान जो आपको कल मिलेगी, परम पिता परमात्मा की पहचान मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जर्नी, हमारी समझ जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आप क्यों कर पाए? क्योंकि आप उस जिंदगी के अंदर डेली रहते हैं, उस घर के अंदर डेली जाते हैं। इसी प्रकार जब हम आत्मिक रूप से उस परम पिता परमात्मा को जानकर उस यात्रा को डेली कंप्लीट करते हैं, तो हमारे लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड का काम लगेगा, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। तभी कहा गया है कि आज के समय के अंदर परमात्मिक शक्ति का बहुत बहुत आवश्यकता है। अचानक और एवर रेडी ये गेम तो आजकल चल ही रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे समय पर परमात्मिक शक्ति को अपनी जिंदगी में आप आने दीजिए, उसको कभी भी परमात्मिक शक्ति को पीछे मत रखिए। परमात्मा यही कहता है कि आज के मानव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मानव जो है आज मुझे गाड़ी के स्पेयर व्हील की तरह यूज कर रहा है। आज परमात्मा को हम लोग स्पेयर व्हील की तरह यूज करते हैं, और गाड़ी का स्पेयर व्हील कहां रखा होता है बताइए? कहां रखा होता है? पीछे डिक्की में रखा होता है। जब गाड़ी के अंदर पंक्चर हो जाता है तब फटाफट हम गाड़ी से निकलते हैं, अरे भाई जरा स्टेपनी को देखना, वो ठीक है या नहीं, उसके अंदर हवा है या नहीं, क्या वो मुझे पार लगाएगी या नहीं लगाएगी। लेकिन परमात्मा कहता है कि अगर तुम मुझे स्पेयर व्हील की जगह ना यूज करके अगर तुम मुझे स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल मैं स्वयं लेकर तुम्हें हर मंजिल पर बहुत सहज रूप से पहुंचा दूंगा। इसकी गारंटी मैं तुम्हारे को लेता हूं, गारंटी मैं तुमको देता हूं। और यही करने के लिए हम आए हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको कभी भी ये नहीं बोला कि घर छोड़ो। हमारे अपने घर में आप देखो कि सब डॉक्टर्स हैं, हम सब लोग कार्य व्यवहार पर जाते हैं, ऐसे हजारों बिजनेस वाले भी यहां पर मैं देख रहा हूं बैठे होंगे जो सब कार्य करते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है कि केवल तू अपने मन का बोझा जो तू इतने सालों से ढो रहा है वो तू मुझे दे दे। भाई मैं देखता रहता हूं कि मेरा बच्चा मेरे को परेशान हो रहा है, लेकिन वो मुझे देता ही नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग अपने जीवन में आखिरी और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट दीपक जरूर चलाकर जाएंगे कि परमात्मा को और परमात्मिक शक्ति को अपने जीवन में आने देंगे। کون کون تیار ہے اس چیز کے لیے. جو نہیں ہے مت اٹھانا, جس کو اور ٹائم چاہیے اگلے سال پھر لیکچر سننا وہ پھر آنا. لیکن کون کون کہتا ہے کہ پرماتمک شکتی کو میرے جیون میں آنا چاہیے, ہاتھ اٹھا کے آنےسٹلی بتائیے. ہاں چاہتے ہیں نا, بہت آوشک ہے. آج سے 32 سال پہلے جب میں نے اپنی لائف میں یہ ڈیسیجن لیا جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا, تو مجھے آج اس ڈیسیجن پر گرو ہوتا ہے. جب ہم لوگ اپنے پریوار میں گئے, بہت بڑا آریہ سماجی پریوار تھا, آپ سمجھ سکتے تھے بڑے بڑے یگ ہوتے تھے, ایسے ہوتے تھے, آئی ایس آفیسر گھر میں تھے, تو ریولٹ ہوتا تھا کہ یہ لوگ برہما کمار بن گئے, یہ ایسے ہو گئے, یہ پڑھیں گے نہیں, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. ایسی چیزیں ہمارے پریوار کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وہ ٹائم بھی ایسا تھا کیونکہ بہت اسٹرانگ ہمارا پریوار تھا, 80s 85 کی بات ہے یہ. تو ہم نے بھی پرن لیا کہ ہم اپنے جیون کے اندر پرماتمک شکشاؤں کو اپنے جیون میں اتنی اچھی طرح اپنائیں گے کہ پرماتما کا نام بھی ہمارے کرموں کے دوارا جانا جائے. اور جو لوگ ہماری برائی کرتے تھے, ہمارے پریوار کے اندر اپوز کرتے تھے, جب ہمارے اپنے نانا جی نے شریر چھوڑا 12 سال بعد, تو انہوں نے اپنے جیون میں سارے پریوار والے لوگوں کو بلا کر بولا کہ اگر بچے, اگر پریوار کسی کا ایسا ہونا چاہیے تو ایسا پریوار ہونا چاہیے. پریوار ایسا پرماتما ہمارے جیون کے اندر بناتا ہے. آپ کیول ایک سنکلپ کے دوارا اس کو اپنے جیون میں آنے تو دیجیے, پھر آپ دیکھیے کہ وہ آپ کے جیون میں میریکلز کیا کرے گا. اور آخری میں میں اپنی وانی کو ویرام دینے سے پہلے کیول ایک بات بتاؤں گا کہ کیا ابھی بھی ہم کو سمے چاہیے. بہت لوگ ایسے ہی ایک مہاتما کے پاس گئے اور بولے کہ مہاتما جی ہم کو پرماتما کو کب یاد کرنا ہے, ایک باری پھر ہم کو بتا دو, آپ روز کہتے ہو. تو وہ پریشان ہو کر ان سے بولا کہ آپ ایسا کرنا کہ آپ پرماتما کو کیول اپنے مرنے سے ایک دن پہلے یاد کرنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ بہت بڑھیا ہے, اسی سے کام ہمارا چل جائے گا. پر جب وہ جانے لگے تو اس میں سے ایک ویکتی مڑ کر بولا کہ مہاتما جی پر ہم کو یہ تو پتا ہی نہیں کہ ہم کب مریں گے. تو اس نے بولا کہ بھیا پھر آج یاد کرو کیونکہ کل کا کسی کو پتا نہیں ہے. تو اگر مجھ کو آج اپنے جیون میں پریورتن لانا ہے تو پریورتن آج لانا پڑے گا, پریورتن آج لانا پڑے گا. یہ سفید کپڑے جو آپ دیکھتے ہو نا, یہ ہماری پیوریٹی کا نشانی ہوتی ہے. لیکن پرماتما کہتا ہے کہ ان سفید کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی بہت سندر اور سفید بنا لو, اس پیوریٹی کی شکتی کو اپنے جیون میں ضرور اپناؤ. تو تیار ہیں ایک نئی یاترا کے لیے, بتائیے تیار ہیں سبھی لوگ, ہاں یا نہیں ہیں؟ آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے آنے والا سمے, یہ شبدوں پر آپ غور کریے گا, آگے آنے والا سمے ایسا سمے آئے گا کہ لوگ چاہیں گے بھی تو ایسے پوتر استھان پر شاید وہ نہ آ پائیں کیونکہ ان کو موقع ملا اور وہ نہیں پہنچ پائے. یہ پرماتما سوئم کہتا ہے. آپ لوگ اتی 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 بیوی اتی بھاگیوان ہیں جو پرماتما کے گھر پر آ کر سوئم آپ یہ نالج کو گرہن کر رہے ہیں. اور ہمارے دل سے کیول یہی دعائیں نکلتی ہے کہ ہمارے اپنے بھائی بہن, ہمارے اپنے جو یہاں پر آئے ہیں, وہ اپنے جیون کو سندر بنا کر یہاں پر جائیں. اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگلے سال انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں اپنے ایکسپیرینسز آ کر اس پلیٹ فارم پر شیئر کریں اور بتائیں کہ ان کا جیون کتنا سندر طریقے سے پرماتما کو اپنے جیون میں آنے دینے سے پریورتت ہو گیا ہے نا. چلیے اب ہم شریر کا بھوجن تو گرہن کریں گے, لیکن کیول 2 منٹ ہم لوگ پرماتمک یاد میں, اور جو جو 5 سنکلپ ہم نے کیے تھے, گریش بھائی کا لیکچر بھی آپ دھیان رکھیے گا, ہیپیٹیوڈ, خوش رہنا ہے, اسمائل, یہ اندر کی نہیں, انہوں نے بار بار بولا ہمارے باہر کی نہیں, اندر کی بھی اسمائل امپورٹنٹ ہے. اور باقی سارے میسجز جو ہمیں یہاں پہ ملے, کوئی کرودھ نہیں کرے گا, من میں شانتی. جب یہاں سے اٹھے نا, یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, یہاں سے اٹھیں گے تو ایک دم آواز آتی ہے بہت تیزی سے, لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں نا, فرشتے اور دیوتاؤں کی چال بڑی کوائٹ اور بڑی شانت میں ہوتی ہے. تو کوشش کر کے آپ دیکھیے کہ 3000 لوگ جب یہاں سے جائیں اور بنا آواز کرے یہاں سے جائیں, بالکل شانتی سے اٹھیں اور بھوجن کو گرہن کریں, تو آپ دیکھو یہ میراکل کہلائے گا. یہ ہماری منوستھتی, ہماری آتمک استھتی کی پاور کہلائے گی. تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ تو آواز نہیں کریں گے, سائلنس میں 2 سیکنڈ کا ریکارڈ بجے گا, ہم لوگ سائلنس میں بیٹھیں گے, تھینکس کریں گے, اپنے من کے اندر وہی سنکلپوں کو ہم دوبارہ جنریٹ کر کے اس کو ری انفورس کر کے اسٹمپ لگائیں گے, سیمنٹ لگائیں گے, اور اٹھ کر بہت شانتی میں, پتہ بھی کسی کو نہیں لگے کہ آواز ہوئی ہے, یہ کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے, بعد میں ہم لوگ روم میں جا کر بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اوم شانتی. ایک ریکارڈ آپ بجا دیں گے, یہ مت کہو خدا سے، یہ اگر آپ بجا سکتے ہیں تو بہت بڑھیا رہے گا. بہت سائلنس میں بالکل پن ڈراپ، جسے کہتے ہیں شمشانی سائلنس، بالکل، اور من بالکل شانتی میں، عظیم شانتی میں، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں ورنہ ہم سو جاتے ہیں، اور بالکل خوشی سے چہرہ مسکراتا ہوا ہو، ہے نا. اس یوگ کی یہی بیوٹی ہے.
میرا خدا بڑا ہے، یہ مشکلوں سے